एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहता है, कभी दबे छुपे तो कभी खुलकर। विश्वास, अविश्वास और ईश्वर का विचार।
बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जिनसे हम सब मतलब कभी ना कभी टकराते ही हैं। और इसी कड़ी में आज हम जिस किताब की पड़ताल करेंगे वो है जूलियन बगीनी की एथियज्म, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन,
नास्तिकता का एक संक्षिप्त परिचय।
हाँ
जी,
ये किताब इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि आजकल धर्म और आस्था पर इतनी बातें होती हैं, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि भाई जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनका नजरिया आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ एक नकार है या इसके पीछे कोई सोचा समझा दर्शन भी है।
हाँ, और ये किताब इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करती है
और शायद उन गलतफहमियों को भी दूर करने की जो जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, ये कोशिश करती है उन आम धारणाओं को तोड़ने की जो नास्तिकता के साथ जोड़ दी जाती हैं, जैसे कि नास्तिक शायद नैतिक नहीं होते या उनका जीवन शायद अर्थहीन होता है। बग्गिनी का प्रयास है नास्तिकता को एक तर्कसंगत और आप कह सकती है सकारात्मक जीवन दृष्टि के रूप में सामने रखना।
तो इस दिलचस्प किताब के लेखक से ही शुरुआत करते हैं। ये जूलियन बग्गिनी हैं कौन?
जूलियन बग्गिनी, हाँ, वो ब्रिटेन के जाने माने दार्शनिक हैं, लेखक भी हैं, पत्रकार भी, फिलॉसफी में पीएचडी हैं और वो द फिलॉसफर्स मैगजीन के सह संस्थापक भी रहे हैं। उन्होंने दर्शन, नैतिकता और खास तौर पर नास्तिकता पर काफी लिखा है।
हाँ, मैंने सुना है। उनकी खास बात यह है कि वो मुश्किल दार्शनिक विचारों को बड़े मतलब सरल अंदाज में पेश करते हैं।
बिल्कुल सही, उनकी बातें सिर्फ अकादमिक दायरे तक सीमित नहीं रहती, आम पाठक भी उनसे जुड़ पाते हैं।
और उनका नजरिया आपने कहा संतुलित है, मतलब वो एग्रेसिव नहीं है।
हाँ, ये जरूरी बात है। वो किसी धर्म विरोधी प्रचारक की तरह आक्रामक नहीं है जैसा कि कुछ और नए नास्तिकों के बारे में कहा जाता है। उनका जोर बहस जीतने से ज्यादा चीजों को साफ करने, तर्क को समझने और आप कह सकते हैं निष्पक्ष जांच पर रहता है।
अच्छा, तो मकसद धर्म परिवर्तन करवाना नहीं बल्कि समझाना है।
जी, शिक्षित करना, स्पष्ट करना कि नास्तिकता क्या है, इसके पक्ष में क्या तर्क है और इससे जुड़ी गलत फहमियां क्या हैं।
एक शिक्षक की तरह न कि किसी योद्धा की तरह।
सही कहा।
तो चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं, एथिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये किताब आखिर करती क्या है, इसका सार क्या है?
देखिए, जैसा नाम से ही जाहिर है ये नास्तिकता का एक संक्षिप्त परिचय देती है, लेकिन ये सिर्फ परिभाषा तक ही सीमित नहीं है, ये नास्तिकता के दार्शनिक और नैतिक पहलुओं की गहराई में उतरती है। कोशिश ये है कि नास्तिकता को लेकर जो एक रहस्य या कह लीजिए डर का माहौल है उसे कम किया जाए।
और इसका मूल तर्क क्या है, मतलब सेंट्रल आइडिया?
किताब का मूल तर्क ये है कि अगर हम मौजूदा सबूतों और दार्शनिक तर्कों को देखें तो ईश्वर या देवताओं में विश्वास न करना एक ज्यादा तार्किक और स्वाभाविक निष्कर्ष लगता है।
बिल्कुल, ये नहीं कहते कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, हालांकि वो मजबूत नास्तिकता की भी बात करते हैं, पर उनका जोर इस पर है कि ईश्वर में विश्वास करने के लिए पर्याप्त और ठोस कारण नहीं मिलते।
और इससे भी अहम बात जो मुझे लगी वो ये कि ईश्वर में विश्वास किए बिना भी एक पूरी तरह नैतिक, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीना मुमकिन है।
बिल्कुल,
ऐसा नहीं है कि ईश्वर नहीं तो सब कुछ खत्म हो या बेकार, बल्कि वो कहते हैं कि इसी प्राकृतिक दुनिया में बिना किसी अलौकिक सहारे के जीवन फल फूल सकता है पूरी तरह।
ये वाकई एक बड़ा दावा है, खासकर हमारे समाज में जहां नैतिकता और सार्थकता को अक्सर धर्म से जोड़कर ही देखा जाता है।
सही बात है।
तो चलिए इस दावे की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, बग्गिनी के अनुसार नास्तिकता है क्या, परिभाषा क्या है?
हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही अक्सर गलतफहमी होती है। बग्गिनी जोर देकर कहते हैं कि नास्तिकता का मूल अर्थ है ईश्वर या देवताओं में विश्वास की कमी, लैक ऑफ बिलीफ।
हाँ,
ये अपने आप में ये दावा नहीं है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि ईश्वर नहीं है।
अच्छा, तो ये विश्वास न करने और ये मानने कि ईश्वर नहीं है, इसके बीच का अंतर बहुत जरूरी है।
हाँ, बहुत। इसे वो कमजोर नास्तिकता यानी वीक एथिज्म,
हाँ,
और मजबूत नास्तिकता यानी स्ट्रॉन्ग एथिज्म कहते हैं।
ओके।
कमजोर नास्तिक वो है जो बस ईश्वर में विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे पर्याप्त सबूत नहीं दिखते।
ठीक है।
मजबूत नास्तिक वो है जो सक्रिय रूप से ये दावा करता है कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। बगिनी मानते हैं कि ज्यादातर नास्तिक पहली श्रेणी में आते हैं।
और इसी से जुड़ा हुआ है सबूत का भार का सिद्धांत, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये क्या कहता है?
ये एक बहुत ही सामान्य तर्क का सिद्धांत है। जो कोई भी असाधारण दावा करता है, जैसे मान लीजिए कोई कहे मेरे गैराज में एक अदृश्य ड्रैगन रहता है,
हाँ ठीक है,
तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसी की है कि वो ड्रैगन वाकई है। सुनने वाले की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो साबित करे कि ड्रैगन नहीं है।
समझ गया। तो बगिनी का तर्क है कि ईश्वर का अस्तित्व एक बहुत बड़ा असाधारण दावा है।
जी हाँ,
इसलिए ये साबित करने का भार आस्तिकों पर है कि ईश्वर है। अगर वो पर्याप्त सबूत नहीं दे पाते तो विश्वास न करना एक तर्कसंगत प्रतिक्रिया है।
बिल्कुल, नास्तिक को कुछ अलग से साबित करने की जरूरत नहीं।
और एक और बात वो साफ करते हैं, नास्तिकता और अज्ञेयवाद,
एग्नोस्टिसिज्म,
इनमें क्या रिश्ता है?
जी।
क्योंकि अज्ञेयवादी कहते हैं कि हम जान ही नहीं सकते कि ईश्वर है या नहीं।
हाँ, ये भी एक आम कन्फ्यूजन है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? जरूरी नहीं। बगिनी कहते हैं कि कई नास्तिक असल में अज्ञेयवादी नास्तिक होते हैं, एग्नोस्टिक एथियस्ट।
अच्छा, वो कैसे?
यानी वो ईश्वर में विश्वास तो नहीं करते, ये नास्तिकता हुई, लेकिन साथ ही ये भी मानते हैं कि वो पूरी निश्चितता से ये साबित नहीं कर सकते कि ईश्वर का अस्तित्व संभव ही नहीं है, ये अज्ञेयवाद हुआ। वो ज्ञान के दावे से बचते हैं लेकिन विश्वास के स्तर पर नास्तिक हैं।
ये परिभाषाएं काफी हद तक चीजों को साफ करती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, बगिनी नास्तिकता के पक्ष में क्या मुख्य तर्क देते हैं, क्यों विश्वास ना करना तार्किक है?
एक बड़ा आधार है प्राकृतिकवाद, नेचुरलिज्म। ये वो विचार है कि ब्रह्मांड को प्राकृतिक नियमों और प्रक्रियाओं के जरिए ही पूरी तरह समझा जा सकता है। हमें किसी अलौकिक शक्ति, चमत्कार या कह लीजिए ईश्वर को बीच में लाने की जरूरत नहीं है।
और विज्ञान की तरक्की कहीं ना कहीं इसी विचार को बल देती है ना?
बिल्कुल, जैसे जैसे हम दुनिया को ज्यादा समझ रहे हैं वैसे वैसे प्राकृतिक व्याख्याएं ज्यादा मिलती जा रही हैं। कम से कम जरूरत कम महसूस होती है अलौकिक व्याख्याओं की।
और इसी से जुड़ा है ओकम का रेजर का सिद्धांत। वो क्या है?
ऑकम्स रेजर।
हाँ,
ये एक दार्शनिक सिद्धांत है जो कहता है कि अगर किसी चीज को समझाने के लिए दो व्याख्याएं हैं तो आमतौर पर सरल वाली बेहतर होती है, जिसमें कम चीजें माननी पड़े। डोंट मल्टीप्लाई एंटिटीज बियॉन्ड नेसेसिटी।
तो बगिनी इसे ईश्वर पर कैसे लागू करते हैं?
वो कहते हैं कि अगर हम ब्रह्मांड, जीवन, नैतिकता जैसी चीजों को ईश्वर के बिना प्राकृतिक रूप से समझा सकते हैं तो फिर ईश्वर को एक अतिरिक्त सत्ता के रूप में मानना ऑकम के रेजर के खिलाफ जाता है। ये एक मतलब अनावश्यक जटिलता जोड़ने जैसा है। क्यों माने कि ईश्वर है अगर उसके बिना भी काम चल रहा है?
ये तर्क दिलचस्प है, लेकिन एक बहुत पुराना और शायद सबसे भावनात्मक सवाल भी है, बुराई की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ईविल।
हाँ, ये नास्तिकता के पक्ष में एक बहुत शक्तिशाली तर्क माना जाता है। सवाल सीधा है, अगर दुनिया एक ऐसे ईश्वर ने बनाई है जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है और परम दयालु है, पूरी तरह भला, तो फिर इस दुनिया में इतनी भयानक और बेवजह पीड़ा, दुख और अन्याय क्यों है?
सुनामी, बीमारियां, युद्ध, ये सब उस ईश्वर की बनाई दुनिया से मेल नहीं खाते।
बिल्कुल, आस्तिक इसके जवाब देने की कोशिश करते हैं, जैसे स्वतंत्र इच्छा का तर्क या ये कि दुख हमें बेहतर बनाता है वगैरह, लेकिन बगिनी और कई दार्शनिक मानते हैं कि ये जवाब पूरी तरह संतुष्ट नहीं करते, खासकर जब हम अत्यधिक और निरर्थक लगने वाली पीड़ा को देखते हैं, बच्चों की पीड़ा, जानवरों की पीड़ा।
सही बात है। इसके अलावा बगिनी ईश्वर की पारंपरिक परिभाषाओं में कुछ तार्किक दिक्कतों की ओर भी इशारा करते हैं।
हाँ, जैसे वो मशहूर पहेली, क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद न उठा सके?
हाँ हाँ, सुना है।
ये विरोधाभास दिखाते हैं कि ईश्वर की अवधारणा या कम से कम ये गुण, सर्वशक्तिमत्ता वगैरह, उतने सीधे नहीं है जितने लगते हैं। इनमें तार्किक समस्याएं हैं।
तो ये थे नास्तिकता के पक्ष में कुछ तर्क। अब उन तर्कों का क्या जो ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए जाते हैं? बगिनी उनका भी विश्लेषण करते हैं ना?
जी हाँ, वो कुछ प्रमुख तर्कों को लेते हैं, जैसे ब्रह्मांड संबंधी तर्क, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट।
हाँ, वो वाला कि हर चीज का कोई कारण होता है।
बिल्कुल, तो पीछे जाते जाते एक पहला कारण होना चाहिए जिसका कोई कारण ना हो, और वही ईश्वर है। फर्स्ट कॉज।
इसका क्या जवाब है बागिनी के पास?
बागिनी पूछते हैं, अगर हर चीज का कारण होना जरूरी है तो फिर ईश्वर का क्या कारण था? ये तर्क ईश्वर को उस नियम से छूट दे देता है जो वो बाकी सब पर लागू करता है। इसे दर्शन में विशेष रियायत या स्पेशल प्लीडिंग कहते हैं।
अच्छा।
और ये भी क्यों ना माने कि ब्रह्मांड ही हमेशा से था या उसकी उत्पत्ति बिना किसी बाहरी कारण के हुई? बिग बैंग थ्योरी कुछ ऐसी ही बात करती है।
ठीक है, फिर एक और मशहूर तर्क है डिजाइन का तर्क, टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट।
हाँ, कि दुनिया में खासकर जीवों में इतनी जटिल डिजाइन दिखती है, जैसे आंख या पंख, कि लगता है इसे किसी बुद्धिमान डिजाइनर ने बनाया होगा। वॉचमेकर एनालॉजी।
इसका क्या जवाब है?
इसका जवाब डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से आता है। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, ये दिखाता है कि कैसे बिना किसी डिजाइनर के लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे जटिल संरचनाएं विकसित हो सकती हैं। जो डिजाइन जैसा लगता है वो असल में प्राकृतिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। आंख जैसी जटिल चीज भी धीरे धीरे विकसित हुई।
और एक तीसरा तर्क है सत्तामूलक तर्क, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ये थोड़ा ज्यादा फिलोसॉफिकल है।
हाँ, ये तर्क ईश्वर को उसकी परिभाषा से ही सिद्ध करने की कोशिश करता है। कहता है कि ईश्वर की परिभाषा ही सबसे महान सत्ता जिसकी कल्पना की जा सकती है।
ठीक है।
और ऐसी सत्ता का वास्तविकता में अस्तित्व होना सिर्फ कल्पना में होने से ज्यादा महान है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व होना चाहिए।
ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है।
हाँ, बागिनी इसे एक तरह का शब्दों का खेल मानते हैं। वो कहते हैं कि किसी चीज को सिर्फ परिभाषित कर देने से वो हकीकत में मौजूद नहीं हो जाती। आप एक आदर्श द्वीप की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वो कल्पना उसे असली नहीं बना देती।
समझ गया। तो मोटे तौर पर बागिनी ईश्वर के पक्ष में दिए जाने वाले पारंपरिक तर्कों को कमजोर पाते हैं।
जी।
अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है लोगों को, नैतिकता। अगर ईश्वर नहीं तो सही गलत का फैसला कैसे होगा? क्या सब कुछ जायज हो जाएगा? क्या अराजकता फैल जाएगी?
ये एक बहुत बड़ी चिंता है और बागिनी इससे बहुत गंभीरता से लेते हैं। उनका साफ कहना है, नैतिकता के लिए ईश्वर या धर्म की कोई जरूरत नहीं है। एक मजबूत, तर्कसंगत और करुणामय नैतिक व्यवस्था पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष आधारों पर खड़ी की जा सकती है।
वो कौन से आधार हैं? कहां से आएगी ये नैतिकता?
सहानुभूति, दूसरों का दुख महसूस करने की हमारी क्षमता, तर्क, ये सोचना कि हमारे कामों का दूसरों पर और समाज पर क्या नतीजा होगा, मानव कल्याण, वो करना जिससे इंसानों का भला हो और दुख कम हो, ये सब धर्मनिरपेक्ष मानवीय आधार हैं।
और वो यहां प्लेटो की यूथिफ्रो दुविधा का जिक्र करते हैं, यूथिफ्रो डिलेमा। वो क्या है?
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। प्लेटो के एक संवाद से ये सवाल उठता है, क्या कोई काम इसलिए अच्छा है क्योंकि ईश्वर उसका हुक्म देता है, या ईश्वर उसका हुक्म इसलिए देता है क्योंकि वो काम अपने आप में अच्छा है?
सोचने वाली बात है। इसके दो मतलब निकलते हैं।
बिल्कुल। अगर पहला सही है कि कोई काम सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि ईश्वर ने कहा, तो नैतिकता तो मनमानी हो गई। मतलब ईश्वर कल को कह देता कि झूठ बोलना अच्छा है तो क्या वो अच्छा हो जाता? ये तो ठीक नहीं लगता।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
और अगर दूसरा सही है कि काम अपने आप में अच्छा है और इसीलिए ईश्वर उसका हुक्म देता है, तो इसका मतलब अच्छाई का पैमाना ईश्वर से बाहर स्वतंत्र रूप से मौजूद है। और अगर ऐसा है तो हमें नैतिकता जानने के लिए ईश्वर की जरूरत ही नहीं, हम सीधे उस स्वतंत्र पैमानों को समझ सकते हैं।
वाह, ये तो वाकई नैतिकता की नींव पर ही सवाल उठा देता है। मतलब या तो नैतिकता मनमानी है या ईश्वर अनावश्यक है नैतिकता के लिए।
हाँ, ये दुविधा यही दिखाती है। तो फिर धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद, सेक्युलर ह्यूमनिज्म, इसी विचार पे आधारित है?
जी हाँ, ये मानता है कि नैतिकता हमारे साझा इंसान होने के अनुभव, हमारी सहानुभूति, हमारे तर्क और इंसानों की भलाई चाहने की इच्छा से आती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो देखते हैं, किसी की मदद करने या किसी को चोट न पहुंचाने के लिए हमें किसी धार्मिक किताब के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ती। यह हमारी अंदरूनी समझ होती है ना?
बिल्कुल। शायद ये नैतिक भावनाएं हमारे विकास का ही हिस्सा हैं। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सहयोग और सहानुभूति हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी थे।
बागिनी यही तर्क देते हैं, धर्म ने शायद इन पहले से मौजूद नैतिक भावनाओं को संगीताबद्ध किया, उन्हें एक ढांचा दिया, कुछ नियम बनाए, लेकिन उन्हें बनाया नहीं। नैतिकता धर्म से पहले की चीज है।
नैतिकता के बाद दूसरा बड़ा सवाल आता है, जीवन का अर्थ या उद्देश्य, मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर ईश्वर नहीं, कोई परलोक नहीं, तो इस छोटी सी जिंदगी का क्या मतलब? क्या ये सब व्यर्थ है? क्या ये निराशाजनक नहीं है?
हाँ, ये भी एक आम धारणा है कि नास्तिकता निराशावाद की ओर ले जाती है, नाहिलिज्म की तरफ। लेकिन बगिनी इसे बिल्कुल सहमत नहीं है। वो कहती हैं कि जीवन का अर्थ ईश्वर या परलोक पर निर्भर नहीं करता, अर्थ और उद्देश्य हम इंसान खुद बनाते हैं।
खुद बनाते हैं, मतलब ये कहीं बाहर से मिलता नहीं, जैसे कोई दिव्य योजना हो।
नहीं, यही निर्मित बनाम खोजा गया अर्थ का फर्क है, क्रिएटेड वर्सेज डिस्कवर्ड मीनिंग। आस्तिक अक्सर मानते हैं कि अर्थ ईश्वर ने दिया है, उसे खोजना है। नास्तिक मानते हैं कि अर्थ हम अपने रिश्तों, अपने काम, अपनी रुचियों, अपने मूल्यों के जरिए खुद रचते हैं, और ये अर्थ उतना ही वास्तविक और शक्तिशाली हो सकता है।
और जीवन का सीमित होना, ये कि हम हमेशा नहीं रहेंगे, क्या ये अर्थ को कम करता है या बढ़ाता है?
बगिनी का तर्क है कि ये इससे बढ़ाता है, क्योंकि ये जीवन अनमोल है, ये सीमित है, इसलिए इसे भरपूर जीना, रिश्तों को सहेजना, दुनिया पर अच्छी छाप छोड़ना और भी जरूरी हो जाता है। अगर जीवन अनंत होता तो शायद हम चीजों को टालते रहते, कल कर लेंगे। परिमितता, फिनिट्यूड, हमें मूल्य सिखाती है, अर्जेंसी देती है।
तो धर्मनिरपेक्ष अर्थ के स्रोत क्या हो सकते हैं? कहां से लाएं ये अर्थ?
बहुत कुछ। विज्ञान हमें इस अद्भुत ब्रह्मांड के बारे में बताता है, उसकी सुंदरता दिखाता है। कला और संगीत हमें गहराई से छूते हैं। इंसानी प्यार और दोस्ती जीवन को रिचनेस देते हैं। ज्ञान प्राप्त करना अपने आप में एक संतुष्टि है। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, न्याय के लिए लड़ना, ये सब जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बिना किसी ईश्वर के।
अंत में बगिनी दुनिया में नास्तिकता के स्थान के बारे में भी कुछ कहते हैं, मतलब समाज में इसका रोल।
हाँ, वो एक जरूरी बात पर जोर देते हैं कि दार्शनिक नास्तिकता को उन राजनैतिक विचारधाराओं से अलग रखना चाहिए जिन्होंने नास्तिकता का झंडा उठाया, जैसे कि मान लीजिए 20वीं सदी के कुछ कम्युनिस्ट शासन।
हाँ, जैसे सोवियत संघ का राज्य नास्तिकता।
बिल्कुल, उन शासनों के अत्याचार, उनकी सत्तावादी सोच, उनकी हठधर्मिता का नतीजा थे, सिर्फ ईश्वर में विश्वास न करने का नहीं।
मतलब खतरा हठधर्मिता में है, डॉगमेटिज्म में, चाहे वो धार्मिक हो या धर्मनिरपेक्ष।
एकदम सही। इसीलिए बगिनी एक सकारात्मक नास्तिकता, पॉजिटिव एथिज्म की बात करते हैं, जो सिर्फ इनकार पर नहीं बल्कि तर्क, करुणा, मानवतावाद जैसे सकारात्मक मूल्यों की पुष्टि पर आधारित हो। सिर्फ नहीं नहीं, बल्कि एक हाँ भी।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो बगिनी की किताब से कुछ मुख्य संदेश क्या निकलते हैं, की टेकअवेज?
पहला और शायद सबसे बुनियादी, नास्तिकता सबूतों के अभाव में एक तर्कसंगत स्थिति है, डिफॉल्ट पोजिशन कह सकते हैं। सबूत का भार आस्तिक पर है, ये विश्वास का नहीं, तर्क का मामला है।
दूसरा, प्राकृतिकवाद, यानी ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, इसे प्राकृतिक नियमों से समझा जा सकता है। ईश्वर की परिकल्पना एक अनावश्यक अतिरिक्त परत जैसी है, ओकम का रेजर।
तीसरा, और ये बहुत अहम है, नैतिकता धर्म पर निर्भर नहीं करती, सहानुभूति, तर्क और मानव कल्याण पर आधारित धर्मनिरपेक्ष नैतिकता संभव है, और शायद ज्यादा मजबूत भी। हम भारत में भी देखते हैं अलग अलग धर्मों के लोग, और जो किसी धर्म को नहीं मानते वो भी बुनियादी नैतिक मूल्यों पर सहमत होते हैं, है ना, कि चोरी करना गलत है या मदद करना अच्छा है।
हाँ, ये अनुभव जन्य बात भी है। चौथा, जीवन का अर्थ और उद्देश्य इंसान खुद बनाते हैं। हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारे मूल्य, यही अर्थ के स्रोत हैं, और जीवन का सीमित होना इसे कम नहीं बल्कि ज्यादा कीमती बनाता है।
और पांचवा, नास्तिकता सिर्फ नकार नहीं बल्कि एक सकारात्मक विश्व दृष्टि हो सकती है, जो इंसानी तर्क, करुणा और इस दुनिया की सुंदरता की कद्र करती है, लाइफ अफॉर्मिंग हो सकती है।
किताब में कुछ पंक्तियां या विचार वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं, जैसे वो सबूत के भार वाली बात आपने जो कही, नास्तिकता स्वयं में एक विश्वास नहीं है बल्कि ईश्वर में विश्वास की अनुपस्थिति है, इसलिए सबूत का भार नास्तिक पर नहीं बल्कि आस्तिक पर है। ये पूरी बहस का रुख ही मोड़ देता है।
हाँ, और वो यूथिफ्रो दुविधा वाला सवाल, क्या कोई चीज इसलिए अच्छी है क्योंकि ईश्वर उसका आदेश देता है, या ईश्वर उसका आदेश इसलिए देता है क्योंकि वो अच्छी है? ये सवाल धर्म और नैतिकता के रिश्ते पर सदियों से चली आ रही सोच को चुनौती देता है। सीधा और गहरा सवाल।
और जीवन के अर्थ पर ये बात कितनी गहरी? एक सीमित जीवन में अर्थ की कमी नहीं होती, इसकी परिमितता ही इसे अर्थ देती है। हमारे अस्तित्व की चुनौती और सुंदरता उस एक जीवन में उद्देश्य बनाना है जिसे हम जानते हैं। ये निराशावाद के आरोप का कितना सुंदर जवाब है।
और प्राकृतिक दुनिया के बारे में, एक ऐसी दुनिया जिसे अलौकिक शक्तियों का सहारा लिए बिना प्राकृतिक नियमों द्वारा समझाया जा सकता है, वो कमतर दुनिया नहीं है बल्कि एक ऐसी दुनिया है जो अपने दम पर हमारे विस्मय और समझ को आमंत्रित करती है, मतलब बिना ईश्वर के भी दुनिया हैरान करने वाली और खूबसूरत है. साइंस इज ब्यूटिफुल.
ये सब बड़े विचार हैं, लेकिन इनका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन.
सबसे पहला तो है आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग. सबूत का भार वाला सिद्धांत सिर्फ धर्म पर नहीं, हर जगह लागू होता है. राजनीति में कोई दावा कर रहा है, विज्ञापन कुछ बेच रहा है, सोशल मीडिया पे कोई खबर है, पूछना चाहिए सबूत क्या है, व्हाट्स द एविडेंस. ये हमें आसानी से बहकावे में आने से बचाता है.
दूसरा, ये हमें अपने नैतिक मूल्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्यों मानते हैं कि कुछ सही है या गलत. क्या हम सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है, या हमने खुद तर्क और सहानुभूति के आधार पर सोचा है? ये अपनी निजी नैतिकता का ढांचा बनाने में मदद करता है, मोर कॉन्शियस एथिक्स.
तीसरा, ये हमें याद दिलाता है कि जीवन का अर्थ खोजने की जिम्मेदारी हमारी है. ये हमें अपने जुनून पहचानने, रिश्तों में निवेश करने और उन कामों को करने के लिए प्रेरित करता है जो हमें संतुष्टि और उद्देश्य देते हैं. इंतजार नहीं करना कि कोई बाहर से अर्थ बताएगा. प्रोएक्टिव अप्रोच टू मीनिंग.
और चौथा, शायद ये बेहतर संवाद का रास्ता खोल सकता है अगर आस्तिक समझें कि नास्तिक सिर्फ विद्रोही या अनैतिक नहीं होते, बल्कि उनके पास सोचने के अपने कारण हो सकते हैं, और नास्तिक भी अपनी बात शांति और सम्मान से रखें, बिना मजाक उड़ाए, तो शायद ज्यादा सार्थक बातचीत हो पाए. लेस शाउटिंग, मोर लिसनिंग.
तो अंत में, इस किताब से सबसे खास क्या लगा आपको? व्हाट स्टूड आउट फॉर यू?
मेरे लिए ये समझना महत्वपूर्ण था कि नैतिकता और अर्थ वाकई धर्म से स्वतंत्र हो सकते हैं, और इसके लिए तर्क मौजूद है. यूथीफ्रो दुविधा ने खास तौर पर मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया, और ये किताब दिखाती है कि इन संवेदनशील मुद्दों पर भी बिना चिल्लाए तर्क और सम्मान के साथ बात हो सकती है. ये नास्तिकता को एक बंद गली नहीं, बल्कि एक अलग रास्ते की शुरुआत के रूप में देखती है.
हाँ, और मेरे लिए सबसे अहम बात ये थी कि नास्तिकता को सिर्फ ईश्वर के इनकार के तौर पर नहीं, बल्कि तर्क, मानवता और इस दुनिया की कद्र करने वाले एक सकारात्मक नजरिए के तौर पर पेश किया गया है. एक तरह से ये जमीन पर पैर रखकर जीने का दर्शन है.
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है. यो ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है.